ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ
ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ।
ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ
ਨਾਮੇ ਕੇ
ਰੰਗ। ਇਹ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਤਾ ਹੈ ਪਾਪੋ ਕੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਲ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਤਾ ਸਾਬਣ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਸ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਨੇ ਕੀ ਵੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ, ਹੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇ, ਐਸੇ ਰੰਗੋ ਕੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲੀ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਖੇਲ, ਜਿਸ ਹੋਲੀ ਕੇ ਖੇਲਨੇ ਸੇ ਤੁਝੇ ਵੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਕੋ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਹਮੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। 5 ਮਿੰਟ ਕੇਵਲ ਔਰ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਠਣਾ ਮਤ, ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਕੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੇ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜਹਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮੇਂ ਬੈਠਤੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਏ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਵੋ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਬ ਤੱਕ ਜੀਰੋ? ਜਬ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਹੱਥ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਰੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੋ, ਜੀਰੋ ਕੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਵੈਲਿਊ ਕਬ ਹੈ? ਜਬ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਏਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵੋ ਏਕ ਲਗਤਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਸਮੇਂ, ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋ ਏਕਾ ਲਗਵਾਏ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਜਾਓਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿ, ਗੁਰੂ ਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿ, ਮਗਰ ਹਮੇ ਤੋ ਯੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਈ ਮਿਲੇ ਕੈਸੇ? ਜਬ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੇ ਕਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਬ ਤੋ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਔਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੂੰਜਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਤ ਬੱਲੇ ਖਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ ਖਰ ਸੇਵਾ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ऐसे उठे रखवाला सब सतगुर दीन दयाला। बोलो जी सारे मेरे नाल है
भगत रविदास कहते कि वो क्योंकि हमारे शरीर में हमारा खास ही ऐसा अंग है जिस हाथ से हम शरीर के किसी भी भाग को स्पर्श कर सकते हैं। हमारे शरीर में सबसे नजदीक हमारा हाथ है, मगर भगत रविदास जी कहते भाई वो तेरा मालिक तेरा गुरु नानक तेरे हाथ से भी तेरे नजदीक है। हम कभी उसको पहचान तो सही। कह रविदास हाथ पहने रे ऐजे होए तो होई मेरे नाल है मेरे नाल है मेरे
सिखाया है। ये दो तीन मिनट की विचार आपके सन्मुख रख के दास समाप्ति। ये जो आप संगत में आए हो ना संगत में, मेरे बाबे नानक ने हमें संगत में आने का भी ढंग सिखाया है। आखो सतनाम संगत में आने का भी। जब मेरे गुरु नानक गए थे ना साल सराय जोहरी के पास, तो साल सराय जोहरी का जो नौकर था अदर का नाम था उसका अदर का, उसकी अध्यात्मक अवस्था को ऊंचा देखते हुए मेरे सदगुरु ने साल सराय जोहरी को कहा था भाई संगत किया कर। नौकर की अवस्था बड़ी थी ऊंची थी, क्योंकि यहाँ गुरु घर में उम्र का जाति का इन बातों का कोई तलक नहीं है। कोई छोटी उम्र वाला भी आपसे कई गुना आगे हो सकता है, कई गुना। और कई बार ऐसा भी मिलती है बात कि 80-80, 90-90 साल की उम्र हो जाती है मगर सोझी नहीं आती। गुरु घर में उम्र का कोई तलक नहीं है। अगर तलक होता तो आज मेरे 8वें गुरु नानक धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह गुरगद्दी से विराजमान न होते। हक सतनाम। उम्र बचपन की मगर जोत गुरु नानक की है अंदर। श्री हर कृष्ण से आइए जिस विठे सब लुक जाए। इसके नौकर की अवस्था को ऊंचा देखते हुए ना मेरे गुरु नानक ने साल सराय को कहा, कहने लगे साल सराय संगत किया कर।
तो सालसराय जोरी कहता है, बाबा मैं तो संगत करता हूँ।
अच्छा भाई, संगत करता है?
भाई कितने समय हो गया संगत करते? कहता है, सतगुरु मुझे कई साल हो गए संगत करते। तो उस समय मेरे सतगुरु ने इसके मन की तरफ नजर डाली, कहने लगे, मन की तरफ देख के कहते, साल सुहाय इतना समा हो गया संगत करते, मगर जो अवस्था बन जानी चाहिए थी तेरे अंदर की, अभी तक बनी नहीं। क्योंकि कई 10-10, 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं संगत करते, अंदर से क्रोध नहीं जाता, अंदर से ईर्ष्या नहीं जाती, वैर विरोध नहीं जाता। इसका मतलब संगत अंदर से नहीं अभी तक खोई, अभी तो केवल दिखावा है। संगत अगर करते हो ना तो मिठास, ये संगत करने वाले की पहली निशानी क्या? ये पूछा था संत अतर सिंह जी मस्तू आने वालों ने अपने सेवादारों से, भाई बताओ गुरु नानक के घर की पहली क्लास कौन सी? तो उनके सेवादारों ने कहा, महापुरुषों आपकी सुमत जो दी हुई, जो गुरु नानक के घर की पहली क्लास है, वो है गुरमत हृदय गरीबी आवे, कि हृदय की निम्रता। ये गुरु नानक के घर की पहली क्लास है। अगर अंदर निम्रता नहीं है, कौड़े वचन बोलते हो, अगर वैर विरोध करते हो, तो प्यारे हो अभी समझ लेना गुरु नानक के घर की पहली क्लास में भी दखल नहीं मिला। सतनाम, अपने आप को जितना मर्जी ऊंचा कह ले, मगर गुरु नानक की नजरों में तेरी गिनती जीरो। आखो सतनाम, पहली क्लास निम्रता मिठास। और गुरु नानक के घर की अंतिम क्लास पता कौन सी है? गुरु का भाणा मीठा करके मनना, मीठा करके तेरा किया मीठा लगे। वो तो खैर उसी बात पे आओ। महाराज कहते कि भाई इतना समा हो गया संगत करते, जो चीज मिलनी चाहिए मिली नहीं। तो उस समय मेरे सतगुरु ने ना संगत करने के 3 असूल बताए थे। वो असूल सुनना। पहला असूल मेरे सतगुरु ने बताया था, कहते साल सराए और जब भी संगत में आओ, अंदर निम्रता। हक सपन हम, ये संगत करने का पहला असूल है निम्रता। अगर आपको गुरु ने कोई गुण दिया है ना, कोई बड़ा औहदा दे दिया, कोई कीर्तनिया बना दिया, या माया ज्यादा दे दी, या किसी भी बात से अगर आपको कोई गुण दिया है, किसी गुरुद्वारे का प्रधान बनाया है, किसी सोसाइटी को चलाने वाला बनाया है, कोई भी आपको अगर गुरु ने गुण दिया है ना, तो गुण का मान जोड़े घर में रख के आया करो। हको सतनाम, क्यों? क्योंकि अगर गुण से भर के अपने मन को ले आएगा, गुणों की खोमे से भर के मन को गुरु घर में ले आएगा, तो खाली चला जाएगा। हमें इसको निकाल के आ, वो बात कर जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछना, ओ गुर सतगुर संग की रे हम थापे। निम्रता, ये पहला असूल है संगत में आने का, निम्रता। कोई भी गुण को तेरे पल्ले अंदर हों में ना आए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, गुरु घर में कामी बख्शे गए हैं, क्रोधी बख्शे गए, विकारी बख्शे गए हैं, मगर अहंकारी नहीं बख्शा जाता। सपन हम, पता नहीं क्यों मेरे सदगुरु को अहंकार करने वाला नहीं अच्छा लगता। मेरे सदगुरु ने आप कहा कि अहंकारियां निंदका पिट दे, नाम देओ मुखलाया, हर जियो निमाणिया तू, निमाणियों का मान है मान वाले का मान नहीं। हक सतन हम, अरे ओ पहली क्लास निम्रता। संगत में आने का असूल भी पहला यही, जब भी संगत में आओ निम्रता से आओ, ताजो गुरु की बात कोई तेरे हमें रूपी खाली मन में वो बात टिक सके, हमें से खाली मन में। बाबा नंद सिंह जी के समय ना एक जोगी हुआ, जोगी 80-85 साल की, जिसकी उम्र बड़ी बंदगी की, मगर अगली मंजिल नहीं मिल रही थी इसको। एक दिन बंदगी में बैठा तो आकाशवाणी हुई, पुकार की थी इसने निरंकार के चरणों में गरीब नवाज, अगली मंजिल नहीं मिल रही। तो आकाशवाणी हुई, भाई फलानी जगह पे चले जाओ, बाबा नंद सिंह जी पूर्ण बंदगी वाले महापुरुष हैं, उनके चरण पकड़ ले, जाके अगला रास्ता मिल जाएगा। जब आकाशवाणी द्वारा जो रास्ता बताया गया उस मुताबिक जब फकीर पहुंचा तो बाबा नंद सिंह ना एक जमीन में ना खाई कह लो टोआ कह लो पंजाबी में टोआ खोद के बैठते थे, टोआ खोद के जमीन में वो क्या कहते जी हिंदी में गड्ढा, गड्ढा खोद के बैठते थे। और अपने उस वो बाबा नंद सिंह जी गड्ढे में बैठे तो ब्रिगेडियर साहब की ड्यूटी थी प्रसादा छकाने की, ब्रिगेडियर साहब बाबा नंद सिंह जी के समय हुए प्रसादा छकाने की। और मैं ये भी बात जब कभी सुनता हूँ ना, मैं अरदास करता हूँ सदगुरु मेरे पे वो कृपा कब होगी, अगर वो 100 में 100 पैसे नहीं हो सकती 30-40 पैसे कर दे। बाबा नंद सिंह जी 24 घंटे जिनकी बंदगी, 24 घंटे जिनका स्मरण, 24 घंटे स्मरण होने के बावजूद एक प्रसादा खाते थे, हम एक रोटी खाने। और कई बार ना प्यार में आके ये कह देना बाबा जी ने, कह देना हम अपने गुरु नानक के भरोसे से कहते हैं अगर ये एक रोटी भी एक प्रसादा भी ना खाएं तो हमारा चलता है, हम जी सकते हैं गुरु की कृपा से, मगर ये प्रसादा एक क्यों खाते हैं कि मेरे गुरु नानक ने कहा है शुद्ध अन्न करे पखंड ना स्वागन ना हो रहे, तो खाते हैं एक प्रसादा कि गुरु के दायरे से बाहर ना हो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब की ड्यूटी प्रसादा रख के चले जाते थे, बाद में जब बाबा जी प्रसादा शक लेते थाल उठा के ले जाना अगले दिन, इसी तरह ड्यूटी बचन करने का हुक्म नहीं था, बचन नहीं बोलने का हुक्म नहीं। तो फकीर आया तो ब्रिगेडियर साहब ना प्रसादा रख के जा रहे थे तो कहता है बाबा जी कि मैं दर्शन करने आया हूँ। तो ब्रिगेडियर साहब कहते जी अभी तो मुझे भी हुक्म नहीं, दर्शनों का हुक्म नहीं, बचन करने का हुक्म नहीं, आप ऐसे करो इसी जगह पे खड़े हो जाओ, अगर मौज हुई महापुरुषों की तो पास बन जाएगी, क्योंकि नाम जपने वाले को परवाह किसी के नहीं, परवाह ना ही बाज सच्चे नाए। कहते इधर खड़े हो जाओ, अगर बात बन गई मौज आ गई महापुरुषों की तो बात हो जाएगी। फकीर खड़ा हो गया तो मन में अरदासें करता है, अब उधर बाबा जी उस खड्डे में बैठे दिल की जान लेते थे, नाम जप के ना मन का शीशा साफ हो जाता है, बाबा जी दिल की बड़ी जल्दी जान लेते थे। अब एक फकीर अरदास कर रहा है, बाबा जी अपने खड्डे में वहीं पे खड़े हो गए, फकीर ने दर्शन किए, दूर से ना अपना जोड़ा उतारा, दूर से बाबा जी के चरणों में नमस्कार कर दी, और उधर बाबा जी खड़े मुख से कोई बात नहीं की, पता क्या किया, बाबा नंद सिंह जी खड्डे से बाहर आए, इस फकीर के पास इसने जो अपना जोड़ा अपनी चप्पल जो जोड़ा उतारा था उस जोड़े को अपने हाथ में लिया और अपने दाढ़े के साथ जोड़े को साफ करके उसी जगह पे जोड़ा रख के फिर खड्डे में जाके स्मरण में बैठ गए। इतनी बात देख के फकीर फूट फूट के रोने लगा, ब्रिगेडियर साहब आए, भाई कोई वचन हुआ कि क्या बात हुई, तो उस समय फकीर कहता है बाबा नंद सिंह जी मैं जो बात अपने मन में लेके आया था मेरी बात का जवाब बिना बोले ही दे गए, भाई क्या बात थी आपके मन में, कहता है मेरे मन में था मुझे इतने साल हो गए मैं बंदगी कर रहा हूँ मुझे रास्ता नहीं मिला, मैंने इतनी बंदगी की मैंने इतना जप तप किया, तो बाबा नंद सिंह जी एक मिनट में मुझे जवाब दे गए कि भाई तू कहाँ अहंकार रूपी मैं को लेके फिर रहा है कि मैंने बंदगी की मैंने जप तप किया, इधर देख अब बंदगी जितनी मर्जी बढ़ जाए जितना मर्जी सिमरन बढ़ जाए मगर अपने मन को उधर ही रखना, हे गरीब निवाज हे गुरु नानक मैं तेरे घर का जोड़े झाड़ने वाला ही हूँ, मैं तेरे घर का कुकर हूँ, मैं कुछ बना नहीं, सब कुछ होते हुए निमाना निशाना पण बड़ी जरूरत है बहुत। ये गुरु नानक की संगत में आने का पहला असूल मेरे बाबे नानक ने बताया, आप ही बताते हैं। कहते भाई अगर संगत में आना है पहला असूल सुन निम्रता से आ, दूसरा असूल, अब इन असूलों पे मैं आधा आधा मिनट की लगाऊंगा, ज्यादा समय नहीं। दूसरा असूल सुनना संगत में आने का प्यारे, और दूसरा असूल मन को एकाग्र करके बैठा करो, एकाग्रता। कई मुझे संगत कहती है जी हम बड़ा यत्न करते हैं मन एकाग्र रहता ही नहीं, होता ही नहीं, क्या करें। हाँ प्यारे एक बात है, एक जो मुसलमान था ना मुसलमान, उसने ना बड़ी बंदगी की, बड़ी तस्बीहां फेरी, बड़े माथे रगड़े, खुदा के दर्शन हो गए उसको, इतनी बंदगी बढ़ गई। जब दर्शन हुए उनको अल्लाह के, उस मुसलमान को, ये केवल एक दृष्टांत है समझने समझाने के लिए, समझना इस बात को। जब दर्शन हुए खुदा के तो दो मिनट बाद ही ना उनका जो इष्ट था, जो खुदा था, उनका चेहरा उदास हो गया। तो वो पूछता था मुसलमान, भाई अभी तो आप प्रसन्न थे, अभी आपका चेहरा उदास हो गया, क्या कारण। तो वो उनका इष्ट कहता है, कहने लगा भाई इसलिए मेरा चेहरा उदास हो गया भाई, तूने बड़ी माला फेरी, बड़ी तस्बीहां फेरी, बड़े माथे रगड़े, मगर मैंने दरगाह में नजर डाली है, तेरा एक भी टेका हुआ माथा, तेरी एक भी फेरी हुई माला दरगाह में लेखे नहीं लगी। हक सतनाम। इतनी बात सुनते ही ना मुसलमान ने नाचना शुरू कर दिया। वो पूछते हैं उनका इष्ट पूछता है, भाई नाचता क्यों गया, कहीं गलत तो नहीं सुन लिया। कहता नहीं मैंने सही सुना है, आपने यही कहा ना मेरी एक भी फेरी हुई माला, एक भी माथा रगड़ा हुआ दरगाह में लेखे नहीं लगा। कहते मैंने यही सुना है, भाई फिर नाचता क्यों गया। तो फिर वो मुसलमान कहता है, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे खुदा, नमाज पढ़ना, तस्बीहां फेरनी, माथे रगड़ने, ये मेरी ड्यूटी थी, दरगाह में लेखे लगाना आपकी ड्यूटी, अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं की तो मेरा क्या कसूर है। आखो सतनाम। मैंने तो अपनी ड्यूटी दी ना, अगर आपने अपनी नहीं की तो मेरा क्या कसूर। मेरे कहने का इशारा, यत्न करो मन जुड़े, अगर नहीं जुड़ता तन करके अपनी ड्यूटी कभी मत छोड़ा करो, एक दिन आएगा मन जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कई लोग कहते हैं जी जब तक अंदर पापों की मैल हो मन ना जुड़े वाणी नहीं पढ़नी चाहिए, मगर ये गलत बात है। अगर मन जुड़े ना जुड़े अंदर पापों की मैल है तो वाणी पढ़नी छोड़ो ना, सिमरन करना छोड़ो ना, क्योंकि मेरे सदगुरु कहते हैं कि अगर सिमरन करेगा तो मैल जाएगी तब। आपको सतनाम। मैल तो तब की जाएगी जब सिमरन करेगा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, बोलते नहीं सारे, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद सिमरन करेगा तो मैल तब की जाएगी। यत्न करो मन जुड़े, क्योंकि तो गुरु घर में मन जुड़ने की बड़ी महानता है। वो गुरु नानक साहब के समय ना टंडोरा फिर गया, यार गुरु नानक साहब नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, नमाज। तो जब नमाज पढ़ने की बारी आई, नमाज काजी ने पढ़नी शुरू कर दी, सारे नमाज पढ़ रहे, बाबा जी चुप। नमाज की समाप्ति हुई, नवाब भी खड़ा था पास, नवाब कहता है गुरु नानक साहब को, सच्चे पातशाह आपने बड़ा ढंडोरा फिरवा दिया कि आप नमाज पढ़ोगे, मगर आपने नमाज तो पढ़ी नहीं, क्या कारण। तो उस समय मेरे गुरु नानक साहब मुस्कुराए, कहने लगे नवाब और मैं नमाज पढ़ता किसके साथ, सतनाम। नवाब कहता मैं नमाज ही तो पढ़ रहा था, अरे कहते मेरा दिल नहीं करता था तेरी बात को खोलू, मगर सुन, अगर खुद ही बोला कह तो सुन ले, तन तेरा नमाज पढ़ रहा था मगर मन जो था काबुल में घोड़े खरीद रहा था, सतनाम। मैं तेरे साथ कैसे नमाज पढ़ता। तो काजी को थोड़ा गुस्सा आ गया, काजी कहता मारा ये तो नवाब है, मेरे साथ नमाज पढ़ लेते, मेरी तो ड्यूटी यही है। महाराज कहते ओ काजी तू एक धार्मिक बंदा है, और मेरा दिल नहीं करता था तेरे पर्दों को मैं नंगा करूं, हक सतनाम, मगर तूने पूछा है तो जवाब भी सुन ले। तन तेरा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था मगर मन जो था तेरा अपने घर में था, कि घोड़ी ने बछेरा दिया है और पीछे गहरी गहरा खड्डा है, बछेरा खोज गया होगा कहीं वो बछेरा जो है खड्डे में न गिर गया हो। हक स्वप्न हम भाई तन करके तो नमाज पढ़ता था मगर मन घर में था, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता। और गुरु गोविंद सिंह महाराज सत्य पातशाह जी के समय की भी बात है, हाजिर गैर हाजिर गैर हाजिर हाजिर, जो सिख पैरे पे थे, जो उनका मन था कि जो सिख गए हैं नाटक देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, पता नहीं क्या देखते होंगे, जो तमाशा देख रहे थे उनका मन था कहीं गुरु गोविंद सिंह जी उठ ना जाएं, तो सुबह महाराज ने फैसला दे दिया, कहते हाजिर गैर हाजिर गैर हाजिर हाजिर हक स्वप्न हम, भाव जो बाहर गए थे तमाशा देखने के लिए उनका मन इधर रहा था कहीं महाराज उठ ना गए को, और जो मेरे पास पैरे पे खड़े थे उनका मन था पता नहीं क्या देखते होंगे, हक स्वप्न हम हाजिर गैर हाजिर और गैर हाजिर हाजिर। मन की हाजिरी की बहुत जरूरत है, जब भी संगत में बैठो मन की एकाग्रता यत्न किया करो। मेरे सदगुरु ने भी कहा, ए मन मेरे तू सदा रहो हनाले, प्रभ की उस्तुत करो संत मीत सावधान। ये दूसरा संगत में आने का, मैं बिल्कुल शताब्दी की स्पीड से चल रहा हूँ और किसी भी बात की गहराई में नहीं जा रहा। तो और तीसरा संगत में आने का असूल प्यारे और श्रद्धा, जब भी संगत में आओ अपने इष्ट अपने गुणानक अपने गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर इतनी श्रद्धा को कि बाबा अच्छे सारे हैं मगर तेरे जैसा तू ही है हक स्वप्न हम, ये श्रद्धा जरूर रखा करो। श्रद्धा वालों के ही बेड़े पार होते हैं प्यारे। अब मैं कीर्तन की समाप्ति करूंगा। ये बेचारे जो है कल के दीवान में, कल सुबह और कल रात को भी दीवान है गोविंद धाम, वहाँ पे आप संगत के सन्मुख होंगी। इस श्रद्धा कैसे रखी जाए, ये तीसरा गुण कि जब भी संगत में आओ गुरु के ऊपर श्रद्धा। पहला कौन सा गुण था जी, के बोलो ठीली आवाज नहीं, क्या गुण था? दूसरा मन की, मैं बोलता हूँ मन की आप बोलना क्या, मन की, और तीसरा गुरु के ऊपर श्रद्धा। जिसके पास तीन गुण हैं, फिर उसी गुणों के कारण मेरे धन गुरु अर्जन देव जी ने कहा, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। इसमें कोई शक नहीं कि वो आप ही नहीं तरेगा, अपनी कुलों को भी तार के ले जाएगा। जो मिल गया मिलता कौन है जिसके अंदर ये तीन गुण आ जाएं। मेरे कहने का इशारा मान करो, ऐसा पिता मिला है जिसने हमें हर बात हमारी झोली में डाली है, कैसे इस संसार में जीना है, कैसे संगत करनी है, क्या खाना क्या पीना क्या बोलना है, कैसे सोना है, क्या करना चाहिए तुझे। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जो मेरे सदगुरु नाम बता के गए हो। तो सलाओ अपने कर्मों को अपने भागों को, एक बार ये पंक्तियां पढ़ लो, कोई भी उठे ना एक दो जरूरी बेनतियां आपको करनी है तो एक बार ये पढ़ो, उसके बाद कथा कीर्तन को विश्राम, कल सुबह फिर दर्शन, एक बार ये पढ़ लो उसके बाद एक दो जरूरी बेनतियां करनी है जी। गुर वड भागी पाया ऐसा, गुर वड भागी पाया, गुर वड भागी पाया ऐसा, गुर वड भागी पाया, भूले मार्ग जिन्ने बताया, ऐसा गुर वड भागी।
कीर्तन के सत्कार से जो भी व्यंत माया आप संगत की तरफ से अर्पण हुई, आपका दिया एक एक पैसा जो अमृत सर्किल वाले गेट विवाह औरतों का जो आश्रम भाई साहब गोरखबाल सिंह जी की प्रेरणा गुरु नानक की कृपा से चल रहा है, 700 विधवा बीबियां वहां से राशन प्राप्त करती हैं और धार्मिक कार्यों के लिए आप जी का एक एक पैसा इस्तेमाल होता है। संगत को बेनती, संगत को एक जरूरी बेनती है, ये ध्यान से सुनना। एक तो अगर आप परवानगी दें तो मेरे मन में जो विचार आई है, प्यार आया है आपको देखते हुए कि कल सुबह 4:30 से 6:30 मैं आज आपके दर्शनों के लिए जो दिल्ली से सारी टी सीरीज की टीम भी हमारे बेदी साहब जी प्रकाश जी और समाप्ति उठना अभी भी कोई नहीं, किसी ने अरदास के बाद हुक्मनामा श्रवण करके गुरु साहब जब अपने स्थान पे जाएंगे उसके बाद जाना जी। आज की रात लगा दो लेके आए संत प्रवण कीर्तन हुआ, बोलते नहीं थक तो नहीं गए, कीर्तन हुआ रैन सबाई। तो आओ जी जय जयकार पढ़ के आनंद साहब।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु 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 हर मन तन वसया कोई जय जयकार करे सब कोई बोलो हर जय जयकार करे सब कोई जय जयकार करे सब कोई हर मन तन हर मन तन बसिया सोई वाहेगुरु 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 बसया तो कोई जय जय बोलो हर मन तन वसिया। राम कली मोहल्ला तीजा आनंद के ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर ता पाया सैंग सेती मन मजिया वर शब्दों संगा वो हरि केरा मन जिने बसाया तू सदा रो भरनाले अंगीकार करे तेरा कार सब स्वारना कहे नानक मन मेरे सदा रो भरनाले करता तेरे सब कुछ है जिसे है सो पावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिट्टो जिसियां बड़ियाइया सच नाम मेरा आधार वज्य पंच शब्द सारे सारे शब्द वज्य खाना जिसका पारिया कर पाया तुम जिनको से नाम हर के लागे आज सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर पूरे बिन मन्ना ने गुर चरण लागे बाजे अनकत संगत को बेनती है कि जो कथा कीर्तन आपने सुना सारी कैसटों का बारस का लगा है महापुरुषों की कैसटों का भी भाई साहब गुर इकबाल सिंह जी की और दासों की भी जो दो नई कहते तू मेरा पिता तू है मेरा माता और गुरु का वचन बसते जी न ले वो भी सीढ़ियों का भी केवल गुरबाणी के प्रचार के लिए चार कैसेटों के साथ एक कैसेट फ्री दी जा रही है। बाजार से सीढ़ी आप 80 या 100 रुपए की लेते हो यहाँ केवल प्रचार को मुख रखते हुए 50 रुपए की सीढ़ी दी जा रही है। जो संगत उच्च टी सीरीज की सीढ़ी का अलग रेट है ये बाकी जो कंपनियों की सीढ़ी है वो 50 रुपए की ली जा रही है। जो संगत उचित समझे वो बाहर से प्राप्त कर लेना जी। आओ जी श्लोक पवन गुरु पाणी तथा मास्तर चंगिया बुराइया वाचे धर्म दूर काल बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतरी अकाल गुरबर अकाल सतरी अकाल गुरबर अकाल बोले वाहे गुरु जी का वाहे गुरु जी की।